रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। वटवृक्ष स्वर्गाश्रम 24 मई 1941। स्वार्थ का बिल्कुल त्याग कर दें, स्वार्थ से दुनिया को कुछ भी फायदा नहीं है। विलासिता के कारण ही आज ये दशा हो रही है। हमारी स्त्रियों में भी विलासिता और शौकीनी यानी अमीरी आ गई, इसी से बुरा परिणाम हो रहा है। हमारे यहाँ के राजा विलासी हो गए तो बाहर से आकर मुसलमानों ने राज्य किया, फिर मुसलमानों का राज्य भी विलासिता के कारण से चला गया। मन को जीत कर रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा यतात्मवान बनो। ये मन बुद्धि संसार में लगाने के लिए थोड़ा ही है, किसी चीज को कहीं लगा दो, लगाना चाहिए वहां नहीं लगाओ, दूसरी जगह लगाओ तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। भगवान में मन बुद्धि लगाने वालों की भगवान ने इतनी प्रशंसा की है उसकी कोई सीमा नहीं। तो भगवान ने क्या कहा है इस बात पर विचार करना चाहिए। भगवान में मन बुद्धि लगानी चाहिए और भगवान पर प्रत्यक्ष में विश्वास करके जैसा उन्होंने कहा है वैसा उनका ध्यान करना चाहिए, उनके ध्यान में मस्त होकर विचरना चाहिए। हरदम आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे पर परमात्मा की बड़ी कृपा है, उनका हमारे पर सदा ही सिर पर हाथ है। सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान हमारे साथ रहते हैं। इस प्रकार अपने परम प्यारे प्रभु को अपने साथ समझना चाहिए। भगवान तो रहते ही हैं, अपने को समझना चाहिए। और इस बात को लेकर हरदम आनंद में मग्न रहना चाहिए। भगवान के ध्यान को, भगवान की लीला को, भगवान के स्वरूप को कभी न भूलें, कभी हृदय से बिसारे ही नहीं। जहां हमारी दृष्टि जावे वहां भगवान को पहले देखे कि यहां भगवान है। गोपियां जहां भी दृष्टि जाए भगवान को देखती थी और नहीं दिखते तो रोने लग जाती थी। भगवान का नित्य संयोग समझकर, अपने पर दया और प्रेम समझकर हंसना भी एक कल्याण का मार्ग है, हरदम हंसते रहो मस्त। और वियोग समझकर रोना भी एक मार्ग है। ये रोना और हंसना भगवान ने कितना अच्छा उपाय दिया था, मार्ग बताया था। हम संसार को लेकर रोते हैं, कोई मर गया, कहीं रुपया चला गया, कहीं अपमान हो गया, इसके लिए रोना थोड़ा ही था, हंसना भी संसार को लेकर थोड़ा ही था, भगवान को लेकर था। या तो भगवान को हरदम अपने पास देखकर हंसते रहो, और या फिर भगवान के वियोग में रोते रहो, देखो कितना जल्दी काम बनता है। जैसे हर वक्त हंसना कल्याण का रूप है, कल्याण देने वाला है, उसी प्रकार हर वक्त रोना भी कल्याण को देने वाला है। अपने यहाँ दोनों तरह के भगत मिलते हैं। प्रहलाद जी कभी रोए नहीं, प्रहलाद जी की भक्ति में हंसी हंसी रही, रोए नहीं। रुक्मणी जी और भरत जी कभी हंसे ही नहीं, रोते ही रोते रहे। दोनों को भगवान मिल गए। प्रहलाद जी में नहीं आता कभी रोने का, रुक्मणी जी तो खूब रोई, भरत जी भी खूब रोए। जो रोने वाले होते हैं उनको भगवान कभी कभी रुलाते हैं और प्रसन्न होते हैं, हंसने वाले हैं उनको भगवान कभी हंसाते हैं और प्रसन्न होते हैं। कभी कभी किसी एक भगत को ही पहले तो हंसा देते हैं और बाद में रुला देते हैं, किसी भगत को पहले रुला देते हैं फिर हंसा देते हैं, ये तो भगवान की लीला है। अपने को जो अच्छा लगे वो करो, भगवान के ध्यान में मस्त रहो। अपने को मस्ती की बात अच्छी लगती है, दुनिया की तरफ देखो ही मत, कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, किसका बर्ताव मेरे लिए क्या है। भगवान की तरफ चलने वाले को इतना वक्त कहाँ है कि जो भगवान को छोड़कर दूसरों के व्यवहार को देखे। शांति और आनंद के समुद्र में डूबो कर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं योगक्षेम का निर्वाह मैं करता हूं, तो योगक्षेम क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति करना योग है और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। साधक का अभी तक जितना साधन हुआ है उसकी रक्षा करना भगवान का काम है, और जो साधन प्राप्त नहीं हुआ है उसको मिला देना भी भगवान का काम है। हमारा काम क्या हुआ? हमारा काम हुआ भगवान की जिज्ञासा करना, भगवान की आवश्यकता समझना, ये हमारा काम है। परमात्मा की प्राप्ति करा देना ये भगवान ने अपने पर ले रखा है। योगक्षेम का अर्थ कई लोग तो लौकिक पदार्थों में लगाते हैं कि जो पदार्थ नहीं मिले वो भगवान दे देते हैं और जो मिला उसकी रक्षा करते हैं। लगाओ भले ही, परंतु हमको तो यही अच्छा लगता है, साधन भजन में लगे रहो, कमी रहेगी भगवान दूर करेंगे, और जितना साधन हो गया उसको भगवान नष्ट नहीं होने देंगे। प्रश्न किया कि योगक्षेम भगवान निभाते हैं पर विश्वास नहीं होता है, क्या करें? उत्तर, विश्वास नहीं होने में अंतःकरण का मैल है, ये कारण है। जैसे आंखों में गीड़ आता है तो सूरज दिखते नहीं है, आंखें चिपकी रहती हैं मैल के कारण, और वो देखता है कि देखो सूर्य दिखता ही नहीं है। सूर्य की गलती थोड़ा ही है, ये तो आंखों का मैल है जो आंख को चिपा दिया, अब नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अज्ञान के कारण हमको विश्वास नहीं होता है। हृदय में जन्म जन्मांतर के इतने पाप छा गए कि उस अज्ञान का नाश नहीं हो रहा है, और परमात्मा की इच्छा किए बिना पापों का नाश नहीं होता। पापों का नाश परमात्मा की इच्छा करने से होता है। परमात्मा पाप का नाश नहीं करते, परमात्मा की इच्छा है वो पाप का नाश करती है। बहुत मार्मिक बात है ये, बहुत मार्मिक बात। परमात्मा की इच्छा से पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है। परमात्मा के तत्व, रहस्य और प्रभाव को समझना चाहिए। उसको नहीं समझते हैं तब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। संसार से इतना थपेड़ा खाते हो, बढ़िया बात, संसार में इतने थपेड़ा खाते हो फिर भी वैराग्य नहीं होता, बड़ा आश्चर्य है। क्या मन चाहा भोग मिलता है, क्या मन चाहा संयोग रहता है, क्या मन चाहा सब काम होता है, या जिसको आप नहीं चाहते वो घटना नहीं होती है, होती है। आप चाहते हो परिवार में ऐसे हैं वैसे ही बने रहें लेकिन मरते हैं। आप चाहते हो हमारी उन्नति खूब बढ़ती रहे, खूब धन बढ़ता रहे, नहीं होता। रो लेंगे, दुख पालेंगे, परंतु वैराग्य नहीं करते, कितना आश्चर्य है। कोई आदमी मर गया तो खूब रो लेंगे, रो रो करके शरीर सुखा लेंगे, बात करते ही रो पड़ेंगे, परंतु वैराग्य की तरफ विचार ही नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान भी क्या करे, शास्त्र भी क्या करे। भगवान ने तो संसार वैराग्य के लिए बनाया, न आपको वैराग्य होता है न उपरामता आती है। आप वैराग्य और उपरामता की तरफ चलकर देखो तो सही, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। कैसी स्वाभाविक शांति मिलती है, जैसे कोई गंगा जी में डुबकी न लगाए तो भी गंगा के पास ठंडी ठंडी हवा मिलती है। इसी प्रकार वैराग्य और उपराम के पास नज़दीक बैठकर देखो तो सही, ये वैराग्य आपका कितना मददकारक है। खूब ध्यान में रहो, भगवान के ध्यान में मस्त हो जाओगे। जैसे आकाश सब जगह है ऐसे भगवान का आनंद सब जगह है। ये आनंद ज्ञान स्वरूप है। इस आनंद में इतनी चेतना है कि आलस्य का नामो निशान नहीं है। इतना ज्ञान है कि विक्षेप नहीं है। आनंद अनंत है, चेतन है, बोध स्वरूप है। जितनी स्थिति हो जाए उससे बढ़ता ही रहे। बढ़ते बढ़ते परमात्मा में डूब जाए, जितने संसार से बेपरवाह होगे उतने ही परमात्मा के अंदर डूबे रहोगे। नारायण नारायण नारायण।